अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जगुडरोचिसंविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन्दाम् श्री श्री गुरु गौरांग राधा विनोद बिहारी जी की कृपा से हम लोगों का इतना दिन बीत गया और 5 दिन की आशा छोड़
24 दिन
देखते देखते निर्विघ्न अच्छी तरह से किसी को कोई तकलीफ नहीं कोई कंप्लेन नहीं अभी तक खूब सुस्त रूप से हमारी परिक्रमा संपन्न हुई। हम समझते हैं गिरिराज जी की विशेष कृपा है जिससे ये सब निर्विघ्न संपन्न हुआ। हरि कथा भी ठीक से चल रही है। पहले हम लोगों ने सवेरे पाठ करता था दामोदराष्टक प्रेम संपूर्ण और इसके बाद में माधुर्य अकादमी और इधर में श्रीमद् भागवत सब ठीक से चल रहा है। वेणुगीत के बाद में अब सखाओं को भूख लगी ऐसे ये असुर से तो निपटना बड़ा भारी मुश्किल है। अशोक वन में आ गया वहाँ पर खाने के लिए कुछ है नहीं। मैयाओं ने भी कलया दूसरी तरफ में भेज दिया पता नहीं इधर आ गए। इसलिए सखाओं ने उनसे कहा बड़ी भूख लगी है रक्षा करो। किस प्रकार से पहले यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास में कृष्ण ने भेजा और उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं कहा और तब ये लौट करके आज आप नहीं जाएंगे तो कृष्ण ने कहा देखो सहनशील होना चाहिए संतों को। जो सहनशील नहीं होगा वो कुछ भी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इस जगत में भी थोड़े में ही बस क्रोधित हो जाते हैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। उस समय विचार करने की शक्ति का लोप हो जाता है और फिर ध्वंस हो जाता है। एक समय सब समय एक चीज याद रखना भक्ति की धारा है वो क्रमशः बढ़ेगी वो कभी बंद हो जाएगी कम हो जाएगी ये नहीं। हम गुरु की वैष्णव की सेवा कर रहे हैं वो तो बढ़ना चाहिए और कम जाए तो कुछ दोष है हमारा दूसरा दाई नहीं हम खुद दाई। सहनशील जितना होगा वो जड़ जगत में भी पारमार्थिक जगत में भी ऊंचा उठ जाएगा। इसलिए कृष्ण ने उनको फिर से भेजा, किस प्रकार से वहाँ गए और वहाँ से गोपियों से उनसे बातचीत हुई और किस प्रकार से उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया। श्री रसानंद ब्रह्मचारी संक्षेप में कुछ बोली।
गुरवी गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णमंताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
भैया इतना मत बांधो नहीं तो फिर समय चला जाता है। संक्षेप में बोलो।
कृष्ण के सखाओं के साथ में प्रचार करते करते हम लोग उनसे पहले भाद्रो गए थे, अपूर्व ध्यान के पास में भाद्रो। कृष्ण के सखाओं के साथ में वहीं पर पहुंचे। दूसरे दूसरे दिन तो भगवान सखा को साथ में आते समय वे साथ में कलेवा लाया करते थे, लेकिन आज साथ में कुछ भी नहीं लाए। जब उनको किसी भक्तों को भर में विशेष में कृपा करना हो तब प्रभु कहीं के कलेवा साथ में नहीं लाए, क्योंकि किसी विशेष भक्तों को सेवा ग्रहण करना है भगवान को, उनको आशीर्वाद करना, इसलिए कभी प्रभु ने लीला की। माना आज वे ब्राह्मण पत्नी को पर भी कृपा करने के लिए आज वो साथ नहीं लाए। अभी सखाओं को बड़े भूख लगी, सखा ने क्या करिया पेट में झूल भूल रहे, कुछ व्यवस्था करो। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, देखो पास में ही यहाँ पर जगह खड़ी है जहाँ पर मथुरा के ब्राह्मण लोग अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं। तुम लोग वहां पर जाओ और उन लोगों से कुछ खाने का वस्तु उनसे प्रार्थना करो। अभी सखा लोग वहां पर गए, सखा लोग जाकर के ब्राह्मणों से अभ्यर्थना करते हुए ब्राह्मणों को बोले, हे ब्राह्मणों, यहाँ पर कृष्ण और बलराम गोचर करते करते ये पास में आए हैं, इसलिए आप लोग कृपा करके हम लोग और कृष्ण बलराम उनके लिए कुछ अन्न दीजिए। वहां पर दूसरा दिन तक कहते पहले कृष्ण का नाम बाद में बलदेव जी का नाम ही। हरे कृष्णा जो कुल में आए वो तो गोप कुल में, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कुल में आए बलदेव प्रभु, वो आए क्षत्रिय कुल में। इसलिए यहाँ पर बता देंगे ये तो गोप कुल में आए, हम उनसे भी जो श्रेष्ठ है श्री बलदेव प्रभु भी आए साथ में, इसलिए आप लोग कृपा करके कुछ अन्न दीजिए। लेकिन जब ये लोग बोले, लेकिन वो लोग तो स्वास्थ्य में लगे हुए हैं और कुछ जगह का कुछ नियम से होता है, इसलिए पूरा उत्सव नहीं किए।
वो क्या बोला मैं इसे नहीं समझा। मैं
उनसे पूछे जब बोला था तुम क्षत्रिय कुल में आए या कृष्ण गोप कुल में,
इसलिए क्या जैसे बलदेव जी का नाम नहीं लिया
है? ये
सब मैं अधिक में मत जाऊं।
लेकिन वो लोग सुनते हुए भी, लेकिन वो लोग सुनते हुए तब वे लोग बड़े दुखी होकर के वहां से वापस चले आए। जब वापस से ले आए सुलकनिया, तुमने कहा मेरा नाम लेना, दाऊ भैया का नाम लेने में कुछ मिलेगा, लेकिन वो लोग सुनते हुए भी स्वाद स्वामी लगे हुए उसे कुछ दिए ही नहीं। अभी महाराज से बता रहे थे, इसलिए जो भिक्षा करने के लिए जाते हैं उन लोगों का दिल में धैर्य गुण होनी चाहिए, क्योंकि जब तक धैर्य गुण नहीं हो तब भिक्षा में कोई गला भी झका देता है, कोई आदर भी करता है, इसलिए धैर्य धारण करना भक्ति जगत में भी। इसलिए भगवान ने कहा बताए, जो सहे सो रहे, जो नाश रहे वो नाश रहे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मठवासियों का धैर्य जो गुण है, सहनशीलता मठवासियों का एक विशेष गुण है, क्योंकि भगवत भक्ति जगत में कहते सत्यम सत्रेन विज्ञानानि सहस्रेण तथा तपो विघ्न अरुतेन गोविंद। कहते कोई सत्य बोलने के लिए जब सौ, कोई तपस्या करने के लिए जब हजार विघ्न है, अगर कोई भगवत भक्ति करने जाते हैं विघ्न अरुतेन गोविंद, भगवत भजन में कहते पुरुष धारा निश्चित दुर्तया दुर्गम परस्तक स्वयं वदन्ति भक्तिमान यज्ञ की गर्थ करुणा। भक्ति लगा पड़े कोटि कांटा युक्त है, प्लेट ऊपर चलना पड़ता है, कहीं भेजना अपराध हो जाए, गुरु हत्या हो जाता है, कहीं सेवा अपराध हो जाता है। इसलिए इसी विषय में साधकों को बड़ी सावधान भगवत भक्ति जगत में रहनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा देखो भिक्षा मांगने वालों को सहन करने की जरूरत है, इसलिए कोई चिंता मत करो, तुम लोग एक काम करो, ब्राह्मण लोग दिए नहीं, ब्राह्मणियों को पास में जाकर कन्या, जो ब्राह्मण लोग इतने बड़े बड़े विद्वान है, सारे सात जगत विवेक चतुर्वेदी, जब ये दिए नहीं बोले ब्राह्मण को पास में जाओ, फिर नहीं जो ब्राह्मण लोग मेरे प्रति बड़ी भक्ति भाव रखने वाले, इसलिए ब्राह्मण को पास में जाओ। अभी सखा लोग गए, जब सखा लोग गए, जब ब्राह्मणियों को पास में कृष्ण का प्रार्थना जनाए, फिर यहाँ पर कृष्ण बलराम को चार दर्शन जी यहीं पर आए हैं, वो लोग भूखे हैं, अब लोग कृपा करके कुछ अन्न दीजिए। इतना सुनते ही पहले से ही ब्राह्मण लोग कृष्ण चरण में बड़ी अनुराग थी, उन लोगों ने पहले से ही कृष्ण का महिमा को श्रवण कर रहे थे, कृष्ण कैसे छह दिन में कितना पद दिया है, एक महीना में कैसे हुए सकड़ा सुख वर्ष कर बिना मत तुम्हारे कैसे विराज उभर कर धारण किए, कृष्ण का महिमा को श्रवण कर करके उनके हृदय में तो एकदम कृष्ण भक्ति की मंदागिरी पै रही थी, कृष्ण को बड़ी बड़ी अनुराग भक्ति थी। जब वे सुने पास में ही कृष्ण बलराम आए, सुनते ही वे लोग जितने सब कुछ देखने के लिए तरह तरह का जो कुछ बनाए थे वो सब के सब ले करके कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए वहां पर आ गए। इतने ब्राह्मणों को जो पता चला हमारे ब्राह्मण या सब कुछ जो कुछ जगह के लिए बना था वो सब के सब कुछ कृष्ण बलराम के ले जा रहे, वहां पर उनको पुत्र पति पिता माता बड़े होने के लिए प्रयास किया, लेकिन जैसे नदी बिना बाधा बगैर जैसे समुद्र तरफ से भागती है उसी तरह उन लोगों ने किसी का बाधा को माने नहीं और वो कृष्ण बलराम के पास आए। जब कृष्ण बलराम के पास आए उसी समय देखा कैसे कृष्ण बलराम अशोक वृक्ष के नीचे कृष्ण बलराम नीचे खड़े और कृष्ण का रूप माधुर्य उन लोगों ने दर्शन किया। श्यामम हिरण्य परिधि वनमालवर्णा धातु प्रवाल हटवे समनु प्रदान से एक दर्शन किया। श्यामम कृष्ण का रंग कैसे श्याम रंग है, लेकिन श्याम रंग क्यों है? अभी महाराज माधुर्य कादम भी बता रहे थे, वो जो कादम भी जो माधुर्य जता है इसलिए वर्षा जो वेग है कृष्ण का रंग वर्षा जो वेग इसलिए जिसमें सब समय करुणा बरसती है और जो कृष्ण है सारा दुनिया को आकर्षण करते हैं और कृष्ण में जो सुंदरता भी होता है माधुर्य भी होता है, इसलिए जैसे कृष्ण स्वरूप जैसे आकाश में वर्षा में जाने पर जैसे अपनिया मंद सुनो का हवा बहने लगती है सभी के हृदय में एक दीप रस की संचार होते हैं, इसलिए कृष्ण श्याम रंग है जो रंग ही जीव को जो कृपा में डाला जो नग्न जीव को जो शांति आनंद और रस प्रदान करे उन लोग श्याम हिरण्य परिधि उसके शरीर में कौन सा कपड़ा था भक्तों को ही अपना शरीर में जो अपना जो स्थान देते हैं और श्याम गला में पांच रंग की पुष्प की माला है इसलिए सुख सारी बताया सुख बोलता है हमारा श्याम तो मयूर को धारण कर बैठी सारिका बोलती जानते हो कि मयूर को धारण करके रख सके क्यों तो उसमें हमारे किशोरी राधा रानी के नाम लिखे हुए इसलिए धारण करते हैं और कौन सा उनका वेश कैसे है तो वेश उनको बनना वेश है बनने पे इसको तरह कृष्ण जी अब सिखा देते जब जब मैं सुंदर हूँ तरह तरह का वेश में सुंदर दिखता हूँ लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर कृष्ण तब है जब वे वृंदावन का पहन वेश सुसज्जित होते हैं उसी समय कृष्ण का जो सौंदर्य माधुर्य सर्वोत्तम रूप से परिप्रकाश होता है और बिना सहस्त्र एक हाथ हुए श्री सखांत कंठ पर दिए और एक हाथ में कमल फूल को लेकर घुमा रहे हैं मानो कमल फूल को लेकर घुमा रहे हैं मानो भक्तों का जो हृदय हृदय कमल है भक्तों का श्री कमल को लेकर मानो भगवान घुमा रहे हैं हृदय घुमा रहे हैं इसलिए इसी रूप में उन्होंने श्री श्याम सुंदर को उनके दर्शन किया भगवान का रूप दर्शन करके उन्हें निहाल गए और जो कुछ लाए थे वो सखा और कृष्ण बलराम को उन्होंने जी भर कर के भेज दिया भगवान ठीक है तुम लोग भोजन कराए तुम वापस चले जाओ तो ब्राह्मण जी ने कहा प्रभु हम लोगों ने पुत्र पिता बंधु भाई सभी को हमने सिला देकर कहा है किसी का बात नहीं सुनी इसलिए हम सब छोड़ छाड़ कर कहा है इसे प्रभु आपका एक उचित नहीं कहना हम लोग वापस चले जाए लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं अभी अगर तुम लोग वापस जाओगे पर उन लोगों ने कहा अभी हम लोगों को आदर नहीं करेंगे हमको कोई घर में स्थान नहीं देंगे भगवान कहे नहीं तुम लोग लोग जाओ अभी आओ ज्यादा ही आदर मिले सचमुच से भगवान की कृपा है जब भगवान वापस भेज दिया उस समय जब जो लोग वापस आते हैं उसको बाद में ब्राह्मणों के हृदय में बड़े विकार आया अब देखो जगत स्वरूप कौन है जगत वे कृष्ण है जगत स्वरूप साक्षात भगवान है और हम लोग ने कहा साक्षात भगवान के लिए उनके सखाओं ने कुछ मांगने के लिए आए लेकिन हम लोग उनको खाने के लिए किया जगत का जो मूल स्वरूप भगवान है जगत में भगवान विष्णु उनको भोजन के लिए हमने नहीं किया और उनको सखाओं को वापस भेज दिया लेकिन देखो हमारा पत्नियों का कितने सौभाग्य है जी का कोई उपनयन संस्कार नहीं जो ब्रह्मदायी जब नहीं कर सकते हैं जो हर समय अपवित्र रहने वाली हमारी जो पत्नियां है देखो वे साक्षात भगवान का सेवा और उसको दर्शन किया से सौभाग्यवान हमारा पत्नियां सौभाग्यवती है इसलिए हम लोग का जीवन दीदार है हमारा जीवन इसलिए जब उनको पत्नियां घर में वापस आती है उसी समय ब्राह्मणों ने लेकिन शास्त्र का जो तात्पर्य है जो भगवत भक्ति भगवत सेवा भगवान का चरण अनुराग अगर अगर जीवन में किया कर नहीं हुआ केवल त्रिवेदी चतुर्वेदी सारे वेद वेदा तो पढ़ से तो पढ़ लिया उसमें कोई लाभ नहीं भले ही हमारा आदर में कुछ भी गुण नहीं हो इसलिए हमारे पितृ का भले सत्यम देखि गौरव तो भजे भले ही कार्य में कोई शुद्धि गुण नहीं हो लेकिन अगर वो भगवत भजन करते अगर वो महापुरुष को भजन करते तब उनका ही जीवन सार्थक होता है इसलिए हमारे स्वयं महाप्रभु ने जानना है अगर यमराज जी के भगवान का चरण अंधार गई हो, प्रेम नहीं तो उनके चरणों में सेवा नहीं किया तो किसी काम नहीं। इसलिए सारे शास्त्र का तात्पर्य है, भले हमारे अंदर में कुछ भी गुण नहीं हो, अगर प्रभु के चरण में हमारा अंधार हो, ऋषि हो, भक्ति हो, गुरु वैष्णव का अगर हम सेवा करते हैं, सब जो सारे शास्त्र का तात्पर्य है हम समझे। अगर सारे शास्त्र में जाकर गुरु वैष्णव की सेवा नहीं, भगवान भक्ति नहीं करते, बेकार है। इसलिए हम लोग का यही शिक्षा देते हैं, भगवान स्वयं भले ही तुम्हारा अंदर में कुछ भी गुण नहीं हो,
कृष्ण ने उनको जब ये पत्नियों को अंगीकार क्यों नहीं किया, वो घर बार छोड़ करके आई, अपने पति इत्यादि सब कुछ को छोड़ करके आई, और ठीक ऐसे ही गोपियां भी आई, किंतु गोपियों के को उन्होंने ग्रहण करके उनके साथ में रास इत्यादि किया और इनके साथ में नहीं किया, क्या कारण बोलो भारती महाराज। माइक दिए दो और कुछ जब अपने प्रश्न का उत्तर दो।
তাদের মাধ্যম দিয়ে তাদের স্বামী তাদের ঘরবারের সবাইকে তিনি কৃপা করেন, এটাই ছিল মূল
কারণ। পরিব্রাজক মহারাজ বলে উত্তর দেন। একটু জোর করে বলবো, একটু
যে কৃষ্ণ কেন গ্রহণ করলেন না, কারণ হচ্ছে এই জাগৃত বিগ্রহ পত্নীগণ এরা তো ব্রাহ্মণ পত্নী, সুতরাং এরা এদেরকে যদি ভগবান কৃষ্ণ কৃপা করেন এখনই তাকে অঙ্গীকার করে নেন, তাহলে এখানে অনেকে হয়তো এর মধ্যে সমালোচনা করতে পারে। আর বিশেষ করে ভগবান যখন যাহাকে গ্রহণ করবেন তখন তিনি ওই বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন আছে, সুতরাং এরা স্বামী ইত্যাদি প্রতিসঙ্গ করেছেন, এই জন্যে যতদিন পর্যন্ত ওদের হৃদয় শুদ্ধ না হয় ততদিন পর্যন্ত ভগবান তাহাকে বিরহ বা অনুরাগের চরম অবস্থা আনবার জন্য একটা সুবিধা করে দেবেন, যে তোমরা আমার প্রতি অনুরাগযুক্ত হয়ে তোমাদের এই যে প্রতিসঙ্গ বা অন্যান্য যে সমস্ত ক্রিয়াগুলো আছে এইগুলোকে ধ্বংস করে তোমরা আমার প্রতি অনুরক্ত হবে, আমি তোমাদেরকে পরে অঙ্গীকার করব।
তুমি বলো তো কুছ। হ্যাঁ মাধব মহারাজ, খুব লম্বা চড়া বখ্যান দিব না, অল্পেতে সময় কম। ও
হিন্দি না ইংরেজি বলবো?
ইংরেজি বলো। ইংরেজি বলো। হ্যাঁ, তো ইন্হোনে বতলাযা, ঠিক বতলাযা। পরিব্রাজক মহারাজ জি নে কুছ অংশ তক ঠিক কহা। কৃষ্ণ মর্যাদা পুরুষোত্তম ভি হ্যায়, ইসলিয়ে গোপীয় কে অতিরিক্ত কিসি ভি ব্রাহ্মণী কো ও প্রকট রূপ মে গ্রহণ নহীঁ করেগে। মর্যাদা কি হানি হোগি? অন্তর সে উনকো গ্রহণ কর লিয়া, কিন্তু বাহার সে নহীঁ, অন্তর সে উন্হেনে গ্রহণ কর লিয়া আর উনকো চান্স দিয়া আগলে জন্ম মে ইস আরাধনা কে কারণ গোপী গৃহ মে জন্ম লেঙ্গি, গ্বালো সে বিবাহ হোগা আর বৈসা অভিমান আয়েগা আর তব উন্হে গ্রহণ করি। জন্মে আর ভি ও কারণ থা কি ব্রাহ্মণিয়া আপনে পতিওকে দ্বারা উপভুক্ত থি, যো ব্রজলীলা মে গোপিয়া আপনে পতিও সে উপভুক্ত থি, উনকো বাল বচ্চে থে, উনকো কৃষ্ণ নে গ্রহণ নহীঁ কিয়া, উনকো ভি নহীঁ কিয়া। ফির জবকি অত্যন্ত বিরহ
তীব্র বিরহ তাপ
আর भीतर में ले जा करके कृष्ण को आलिंगन किया, उनका शुभ अशुभ इत्यादि वो सब कुछ जब दूर हो गया, तब उसी जन्म में जब फल पकते हैं तब उसको ग्रहण करते हैं, उस रूप में जब जब वो शुद्ध होते गए कृष्ण उनको ग्रहण किया। बहुत
और जिस ब्राह्मण ने शरीर छोड़ दिया
वो, हाँ वो पा गई, वो पा गई, वो चली गई। जिस ब्राह्मणी को लोगों ने रोक लिया वो तो वो शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर में सब लोगों से अधिक विरह था और इसलिए वो गोपी शरीर प्राप्त हुई होगी और कृष्ण ने उसे कहा
आत्मस्वरूप में तो गोपी बन गई,
आत्मस्वरूप से तो गोपी हो गई। इसलिए साधु संग में रहने से ऐसी हरि कथा होती है बिजवत, कोटि कोटि जन्म के संस्कार मिट करके ऐसी विशुद्ध भक्ति होती है। बस दो दिन आए मठ में, सन्यास ले लिया या ब्रह्मचारी रहे, सब कुछ जान लिया, बालक मठ करने की जरूरत है और यहाँ से हम प्रचार करें। क्या प्रचार करेंगे, करेंगे क्या? इसलिए साधु संघ में रहो, ऐसे ऐसे तत्व सिद्धांत को समझो और भजन करो आगे। गोपिया गोपियां वो लौटी नहीं, कृष्ण को तर्क में परास्त कर दिया, परास्त कर दिया और कृष्ण उनकी युक्ति से हार गए और तब उनको बाध्य होकर के कहना पड़ा अच्छा अब रास करें। इसलिए गोपियां बहुत ऊपर है। हाँ क्यों नहीं जाएगा, जाएगा क्यों नहीं थे, नहीं जाएगा तो उसको देखो
So the question was asked.
You should narrate this story. जब नंद बाबा को वरुण के दूतों ने पकड़ लिया और वरुण लोक में ले गए, कृष्ण उनको कैसे छुड़ाए और कैसे उन्होंने ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक का दर्शन कराया।
एक समय नंद समस्त ब्रजवासी एकादशी का व्रत किए, जो कि एकादशी के रात्रि में और द्वादशी का दिन है दूसरे दिन, जबकि रात्रि को ही मध्य रात्रि में नंद महाराज जी स्नान करने पहुंचे। उन्होंने सोचा कि रात्र काल होने जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, मध्य रात्रि का समय, जबकि वे स्नान करने को चले गए पानी में उतरे, इतने में वरुण देव के दूत चारों ओर घूम रहे थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया, पानी में लेकर के चले गए। असल में वरुण देव की इच्छा थी किसी भी वाहन में कृष्ण यहाँ पर आए और हमारे घर को या स्थान को पावन बनाए, इसी कारण वरुण देव की बड़ी अभिलाषा थी। उन्होंने अपने चरणों को लगा रखा किसी भी कोई मौके पर कैसे भी ना हो, तो इसलिए पहले नंद महाराज जी को यदि ले जाए तो इसी बात में कृष्ण को आना पड़ेगा। इसलिए वरुण देव के दूतों ने नंद महाराज जी को लेकर चले गए, ले जा करके अच्छी जगह अच्छी प्रकार से रखा। परंतु जेब ही पानी में डूब गए, इतने में जितने भी नंद महाराज जी के बॉडीगार्ड थे पहरेदार वे सभी शोरगुल मचा दिए कि अरे महाराज जी पानी में चले गए चले गए। सभी तो हल्ला मचा, उस समय तो सभी लोग रोने लगे। कृष्ण ने कहा आप लोग चिंता नहीं करें, मैं अभी आ रहा हूँ पिताजी को लेकर। इतना कह करके साथ ही साथ पानी में डुबकी लगाए और वहीं से सीधा वरुण लोक में। वरुण लोक में पहुंचते ही वरुण देव ने भगवान श्री कृष्ण को देख करके बड़े आनंद दिए और उनको सिंहासन में बैठा करके पूजा अर्चना करने लगे, साथ ही नंद महाराज जी को भी। तो नंद महाराज जी देखने लगे भाई ये क्या हो रहा है यार, तो ये तो कितने आनंद से पूजा अर्चना कर रहे हैं, कितनी स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं देख देख करके उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पर इस प्रकार पूजा अर्चना आदि स्वागत अभिनंदन आदि के पश्चात अब कृष्ण नंद बाबा को लेकर के वहां से चले आए। जबकि परलोक से लौट करके आए तो सभी लोग बड़े घबराए हुए थे, विस्मित थे कि क्या हुआ, वो कैसे चले गए, कहां हुआ। तो जबकि वे निकल के आए सभी को बड़ा आनंद हुआ। तो इस प्रकार जब सभी लोग बड़े आनंदित थे तब नंद महाराज जी ने सारी घटनाएं बताई। बड़ा आश्चर्य देखा वहां कृष्ण को सभी पूजा कर रहे हैं स्तुति प्रार्थना कर रहे। सब ब्रजवासी लोग बोले भाई हमारे कृष्ण तो कोई साधारण नहीं थे, इसलिए गर्गाचार्य ने जो कहा है नारायण समग्र है तो गुणों में नारायण के समान इनमें कोई नारायण का आवेश होता है, प्रवेश हो जाता है, इसलिए विशेष चमत्कार होता है। चलो ब्रजवासियों ने यह सोचा और इच्छा व्यक्त की, हे कृष्ण हम लोगों ने तो घर गृहस्थी की, कोई भजन साधन तो किया नहीं, कोई भगवत की आराधना नहीं की, हमारा कैसे उद्धार होगा, हम तो घर गृहस्थी वाले। तो आप तो इतने बड़े प्रभावशाली और गुणों में नारायण के समान है, जैसे नंद बाबा से सुना है कि वरुण लोक में ये वरुण देव भी आपका स्वागत अभिनंदन किए, तो कृपा करके आप अपना लोक तो दिखा दो, जैसे हम लोगों का उद्धार हो जाए ऐसी कोई व्यवस्था ना, कौन सा लोक है क्या। तो उस समय कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, सब आप लोग ब्रह्म हृदय में यहाँ पर स्नान कीजिए, अपूर्व उद्धार ब्रह्म हृदय। उस ब्रह्म हृदय में जिन भी स्नान किए सभी ब्रजवासी जन सब लोकम दर्शयामास, जो कि ब्रजवासियों को अपना लोक दिखाई। तो सबसे पहले बिलोक ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक की स्थिति तो हुआ है जैसे प्रिय भाई वृंदावन में दिखाते हैं ना कि ब्रह्मलोक तो एक दिव्य ज्योतिर्मय धाम है, महाकाल पुरम है और सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यस्य हरिणा भरत, जहाँ ब्रह्म सुख में डूबे हुए हैं और भगवान श्री हरि के हाथों में मारे गए दैत्य दानव भी वहां पहुंचे थे, सब मुक्ति में हंसे जैसे पड़े रहते थोड़े आनंद में हम पड़े हुए, उनको कोई होश आवाज नहीं देता। इसी तरह की एक स्थान है, तो ये स्थान को देख करके बेलू बोले अरे हम आए ना, ये क्या है, अरे कोई चेतना भी नहीं बेहोश सी जैसे आ रहा है और एक आनंद में मानव पड़े हुए, ये क्या स्थिति है, हमें तो ये नहीं चाहिए, ये मैं कहाँ आया। तो इस प्रकार ब्रजवासियों ने सोचा, तो तब कृष्ण ने क्या किया उनको उठा करके वैकुंठ धाम दर्शन करा दिए। वैकुंठ धाम में भी उनको अच्छा नहीं लगा, ये कहाँ ये ऐश्वर्यमय लोग, सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करना पड़ेगा। बोले कि बोल शांताकार भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सु बोले कि नहीं 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 हमें तो यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ से हमें तो यहाँ और जगह जाना पड़ेगा,
नहीं हम वृंदावन में ही लौट आए।
तो उस समय जबकि कृष्ण ने फिर से क्या किया, गोलोक धाम का दर्शन किया। तो गोलोक धाम में वहां जैसे पहुंचे अपने दूर से देखने लगे कि यहाँ कोई तो कृष्ण है, तो कृष्ण को देख करके थोड़ा मन में शांति हुई। तो उस समय वे निकट में आने लगे, निकट में आते ही देखा कि यहाँ तो कृष्ण बड़े मर्यादा भाव में, बड़े गंभीर भाव में है, कहा हमें देख करके दौड़ करके आता है, गले में निमट जाता है, यशोदा मैया की गोदी में बैठ जाता है, दूध पीता है, और आज तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ना उसको पीता जाए करके गले में निमट रहा है, न कोई प्रेम भाव ने बात किया, ऐसे तो बेमन है। तो नंद बाबा आदि को सभी को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज कृष्ण ऐसे कैसे कमरे बनेगी, ये क्या हुआ, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमारा वही वृंदावन अच्छा है जहाँ कृष्ण हमारे गोदी में बैठ जाए, मुंह से पान की बिड़िया भी निकाल करके ले चबा कर खा ले। तो ऐसे ही जो बाल गोपाल स्वरूप है और जहाँ इस प्रकार किरण करते हैं, ऐसे प्रेम की चमक करता है, तो ऐसे स्थान वही वृंदावन हमारा चाहिए। ऐश्वर्य से बढ़ करके माधुर्य माधुर्य का स्थान, इसलिए वैकुंठ से ब्रह्म रूप से वैकुंठ को श्रेष्ठ दिखाया, वैकुंठ में जहाँ परिपूर्ण ऐश्वर्य और उससे भी ऊपर में गोलोक धाम ऐश्वर्य की भूमि, परंतु उस ऐश्वर्य की भूमि को पार करके माधुर्य की भूमि है ब्रज वृंदावन। वो माधुर्य में वहां भी ऐश्वर्य है, परंतु वो ऐश्वर्य उस प्रकार से है जैसे एक दूध की कढ़ाई में एक किंगा है और ये घास का टुकड़ा या कुछ ऐसे गिरा हुआ, दूध जब फोड़ने लगता है तो कभी नीचे कभी ऊपर वो पकड़ के नहीं आता। इसी तरह से ब्रज वृंदावन में अपार ऐश्वर्य के होते हुए माधुर्य समुद्र में कहां नीचे चला गया उसका कुछ पता नहीं। इस प्रकार अपार प्रेम माधुर्य ब्रजवासी जनों में जिस प्रेम समुद्र में डूब करके कृष्ण भी वहीं पर प्रेम रस का आस्वादन करते हुए अपने ऐश्वर्य भाव को भगवंता को भूल जाते हैं और उस प्रेम में डूबे रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने अपना अपना रूप दर्शन
कराया। यहाँ पर भागवत के अनुसार जम जी कुबेर जानबूझ करके उनका दर्शन करने के लिए ऐसा किया, ऐसा नहीं, जानबूझ करके नहीं, एकादशी के दिन, एकादशी समाप्त होने के बाद में द्वादशी के दिन रात में स्नान उन्होंने किया। अब वरुण के दूतों ने उनको पकड़ करके फिर वरुण लोग ले गए। जब कृष्ण वहाँ पर पहुँचे तो वरुण जी कहते हैं कि हमारे सेवक बड़े नादान हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, बाबा आपके पिताजी सबके पूज्य हैं, इनको भूल से ले आए हैं, इसलिए आप क्षमा कीजिए और बाकी सब ठीक है। भूल करे नहीं गए, ये सब होगा। यो ट्रांसलेट
So, Varuna Dutas, actually, Nanda Maharaj, it was Ekadashi day, Nanda Maharaj observed Ekadashi, and then on Dwadashi night, Ekadashi night, he wanted to go and bathe in the Jamuna. So that time when he went to bathe in Jamuna, that time the Varuna Dutas came, assistants of Varuna, the desiring deity of the water. All the water tanks, water rivers, ocean, everything. So, the Dutas of the Varuna took Nanda Maharaj to the Varuna's abode. And when Varuna saw Nanda Maharaj, he knew that Krishna will also try to get him. So then Krishna and all the Gopas started saying that, oh, Varuna has disappeared, Nanda Maharaj has disappeared. He has gone inside the water, he never came out. So Krishna said, don't worry, I'll try to get my father back. So he died in the water. And he immediately went to the abode of Varuna. So there, Varuna had respectfully seated Nanda Maharaj on a nice throne and was treating him very respectfully, knowing that he is the father of the Krishna, the Supreme Lord. So then when Krishna went there, immediately Varuna started offering prayers to Krishna. He gave a nice seat to him. And with various paraphernalia, he worshipped Krishna and offered Savastuti glorification and even also worship Nanda Maharaj. Then Varuna actually told that these messengers, actually my assistants, they have made a mistake because they didn't know that Nanda Maharaj is your father and they have committed a mistake. So please forgive them because they are ignorant. And later on, Krishna came back out of the with his father, and when Gopa saw this, the Gopas were wonderstruck. Gopas said that, and Nanda Maharaj narrated all these incidents, that how they went to the abode of Varuna, and Varuna treated them so respectfully, and Krishna was glorified with so many prayers, and he was worshipped with different puja upachar, so much paraphernalia. So hearing that, all the Gopas told Krishna, Krishna, you are so great. Actually, when you were born, Dattacharya had told that this boy is equal to Narayan in the qualities. And he's just like Narayan. So we now know that sometimes Narayan enters in your body. So, but we are householders. We don't do any sadhana bhajan. We don't know any, we don't do anything for emancipation. So please try to deliver us and show us the spiritual world. So that time Krishna told them, alright, come to Brahmarath. Brahmarath near Akur Tirtha in the Jamuna. And you should now take a bath in it. As soon as they took bath in the Brahmarath, they went to the Brahma Loka. This Brahma Loka is actually the lower portion of Shiva Loka. It's called Siddha Loka. It's beyond the Virija River. But the impersonalists, those who waited on the impersonal form of and do Anga Upasana, and those demons who are killed by Krishna, such as Kamsa, they land up in this particular abode called Siddha Loka. That place is actually full of effulgence. And that place there is, practically speaking, everyone is intoxicated by a particular type of Brahmananda, a type of impersonal happiness. And there is no, Bhagavan's personal form is not visible to these people because of their offenses. So Bhagavan is present everywhere. So such people, so when the Vrajavasins saw this type of Brahmananda and they were absorbed in intoxication of Brahmananda, and so that time they said, we don't want to support. We is better that we want our drug, that is far better. So then Krishna saw that they don't like this Brahma Loka or Siddha Loka. And Krishna promoted them to the Vaikuntha planet. When Krishna took them to the Vaikuntha planet, then Vaikuntha Loka is full of opulence, awe and reverence. So Pujavatitha Maharaj quoted the Shloka, Shantakaram.